कतिपय अन्य महत्वपूर्ण संकेत व सूचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला, हस्तिनापुर के राजा संबरन और उत्तर पंचाल के राजा सुदास के संघर्ष का स्पष्ट वर्णन ऋग्वेद में विद्यमान है। सुदास ने संबरन को परास्त कर न केवल हस्तिनापुर अपितु यमुना तक के सब प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया था। सुदास की इस शक्ति को इस ढंग से बढ़ते हुए देखकर पश्चिम के अनेक राजाओं ने संबरन की सहायता की और एक संगठन बनाकर सुदास का प्रतिरोध करने का प्रयत्न किया। इस संघ में मत्स्य, तुर्वसु, द्रुह, सिब्बी, पक्त, भलमानस, अलीन, पुरु, विषाणी और यदु राजाओं व जातियों के राजा सम्मिलित थे। परुषनी रावी नदी के तट पर सुदास ने इन सब की सम्मिलित शक्ति को परास्त किया और संबरन ने वहां से भागकर सिंधु नदी के तट पर एक दुर्ग में शरण ली। उत्तर पंचाल राज में के इसी शक्तिशाली राजा का पुत्र वह सहदेव था जिसके पुत्र सोमक द्वारा दान में प्रदत्त घोड़ों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसके संबंध में इसी प्रकरण में ऊपर लिखा भी जा चुका है। सुदास और संबरन के युद्ध तथा सुदास के शक्ति का विस्तार का जो विवरण ऋग्वेद में दिया गया है वह यथार्थ इतिहास है। दूसरा, चैमान के पुत्र राजा अभ्यावर्ती और ब्रीचिंदवंतों के राजा वर्षिक के युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। यह युद्ध हरियुपिया नदी के तट पर लड़ा गया था जो सिंध की अन्यतम सहायक नदी थी। तीसरा, वैदिक संहिताओं में अनेक ऐसे सूक्त विद्यमान हैं जिनमें कतिपय राजाओं के दान आदि की स्तुति की गई है। उदाहरणार्थ ऋग्वेद के एक सूक्त में ऋषि वसिब्य ने कानित्य पृथुश्रवा के दान की भूरी भूरी प्रशंसा की है और उन द्वारा दिए हुए 60,000 घोड़ों, 2,000 ऊँटों तथा 10,000 गौवों का उल्लेख है। ऐसी ही कितनी ही अन्य दान स्तुतियों की सत्ता ऋग्वेद में है जिनसे वैदिक युग के प्रतापी एवं दानी राजाओं का परिचय प्राप्त किया जा सकता है। चौथा, इंद्र द्वारा असुरों, दस्युओं और दासों के परास्त किए जाने का ऋग्वेद में अनेक सूक्तों में वर्णन किया गया है। इंद्र की शत्रु जातियों के उन राजाओं और नेताओं के नाम भी ऋग्वेद में मिलते हैं जिनके पुरों को ध्वंस कर इंद्र ने आर्यों के मार्ग को प्रशस्त किया था। इनमें वृत्र, संबर, चुमरी, तुग्र आदि मुख्य थे। इंद्र द्वारा आर्य भिन्न लोगों को परास्त करने के संबंध में अगले अध्यायों में यथास्थान विशद रूप में लिखा जाएगा। यहाँ इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त होगा कि इंद्र के असुरों, दासों और दस्युओं के साथ युद्धों का जिस ढंग से वर्णन ऋग्वेद में किया गया है वह वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं का सूचक प्रतीत होता है। एक मंत्र में कहा गया है कि इंद्र ने अपनी सेना द्वारा 7,000 अर्बुद दस्युओं का घात कर दिया। एक अन्य मंत्र में संबर के 100 पुरों के नष्ट किए जाने का उल्लेख है। ये वर्णन किसी यथार्थ ऐतिहासिक घटना की ओर ही संकेत करते हैं। पांचवा, ऋग्वेद में अम्बरीश, नुहुस, मांधाता, पुरुरवाएल आदि कितने ही ऐसे राजाओं का उल्लेख है जिनके संबंध में पौराणिक अनुश्रुति में पर्याप्त रूप से विशद विवरण विद्यमान है। वेद में इनका उल्लेख प्रायः दान स्तुति के प्रसंग में या इन द्वारा निष्पादित किए गए किसी महत्वपूर्ण कार्य को सूचित करने के लिए ही किया गया है, क्योंकि वेद प्रधानतया धर्मपरक ग्रंथ है। अतः यह स्वाभाविक भी है। वेदों में आए हुए ऐतिहासिक घटनाओं के साथ संबंध रखने वाले संकेतों को तभी भली भांति समझा जा सकता है जबकि पौराणिक अनुश्रुति को दृष्टि में रखा जाए। इसीलिए प्राचीन विचारकों ने कहा था, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थ मुह पृहम एत विभत्तले रसुतो द्वेदो माम्यम प्रहर्ष्यति, अर्थात इतिहास रामायण और महाभारत। और पुराणों द्वारा वेदों के अभिप्राय को समझा जाए। अल्पश्रुत जिसे अनुश्रुति का ज्ञान न हो मनुष्य से वेद डरता है, कहीं वह मुझ पर प्रहार न कर दे अर्थात मेरे अर्थ का अनर्थ न कर दे। वेदों में अनेक नदियों पर्वतों जनपदों जातियों तथा राजाओं के नाम भी मिलते हैं। सप्त सिंधव देश की सरस्वती परुषनी सिंधु आदि सात नदियों गंगा और यमुना तथा अन्य अनेक नदियों के नाम ऋग्वेद में विद्यमान हैं। गांधार किक्कट आदि कितने ही जनपदों व प्रदेशों के नाम भी वेदों में आए हैं। इन सब का सातवें अध्याय में उल्लेख किया जाएगा। ये सब तथ्य यह सूचित करने के लिए पर्याप्त हैं कि वेदों में ऐसी सामग्री विद्यमान है जिसका उपयोग इतिहास के प्रयोजन से किया जा सकता है। ऋग्वेद में आए नदियों के नामों के आधार पर यह प्रतिपादित किया जाता है कि उस काल में आर्यों का भारत में कहां तक प्रसार हुआ था। ऋग्वेद की नदियों का संबंध प्रायः उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं पंजाब तथा हरियाणा के प्रदेशों के साथ है। अतः यह समझा जाता है कि ऋग्वेद के समय में आर्य लोग प्रायः इन्हीं प्रदेशों में बसे हुए थे। बाद में उनका प्रसार पूर्व तथा दक्षिण की ओर हुआ। अथर्व वेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों में आर्य जाति के प्रसार की इस प्रक्रिया के संबंध में अनेक संकेत भी उपलब्ध होते हैं। इतिहास के प्रयोजन से वेदों का उपयोग करने के संबंध में जो बातें ऊपर लिखी गई है कतिपय विद्वान उन्हें संगत नहीं समझते। वैदिक शब्दों को रूढ़ी न मानकर वे उन्हें यौगिक मानते हैं और वेदों में आए जिन शब्दों को राजाओं का नाम समझा जाता है उनका वे अनढंग से अर्थ करते हैं। उनकी विधि का निदर्शन ऊपर लिखे साहदेव सुमक के उदाहरण से भली भांति हो जाता है। इंद्र का अर्थ वे परमेश्वर करते हैं और असुर दस्युदास आदि शब्दों को मनुष्यों की कुप्रवृत्तियों का परिचायक मानते हैं। आध्यात्मिक आधिदैविक और आधि भौतिक दृष्टियों से वे इन शब्दों की व्याख्या अन्य ही प्रकार से करते हैं। ये विद्वान राजाओं के नामों के समान गंगा यमुना सरस्वती सिंधु आदि नदियों तथा गांधार किक्कट आदि जनपदों के नामों का भी यौगिक अर्थ करते हैं। वे यह स्वीकार करने को उद्यत नहीं हैं कि ये शब्द भारत की विविध नदियों तथा जनपदों के सूचक हैं। ऐतिहासिक और नैरुक्त विचार संप्रदायों का मतभेद बहुत पुराना है। उसकी सत्ता के प्रमाण यास्काचार्य के निरुक्त में भी विद्यमान है। यहाँ हमारे लिए संभव नहीं है कि इन दो संप्रदायों के मंतव्यों पर विचार विमर्श कर किसी निश्चय पर पहुँचने का प्रयत्न करें। संभवतः इसकी आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि वैदिक युग के राजनीतिक इतिहास का हमारा मुख्य आधार वह अनुश्रुति है जो पुराणों में संकलित है। जिस प्रकार ऋषियों के वचन श्रुति द्वारा ऋषियों के कुलों में सुरक्षित रहे वैसे ही राजवंशों तथा राजाओं के वृतांत सूतों के परिवारों में कायम रहे। वेद व्यास ने जैसे ऋषियों के सूक्तों तथा ऋचाओं को संहिताओं में संकलित किया वैसे ही राजाओं और राजवंशों के साथ संबंध रखने वाली अनुश्रुति को पुराणों में। इसीलिए वेद व्यास को 18वां पुराण का कर्ता भी कहा गया है। इन पुराणों में प्राचीन भारत की राजनीतिक अनुश्रुति संग्रहित है और इतिहास के लिए उसका भली भांति उपयोग किया जा सकता है। आधुनिक समय में जब प्राचीन भारतीय इतिहास की खोज का कार्य प्रारंभ हुआ तो पुराणों की प्रायः उपेक्षा ही की गई, पर पारजीटर महोदय ने पुराणों में संकलित राजनीतिक अनुश्रुति के महत्व को समझा और बड़े परिश्रम से एनिशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन नामक ग्रंथ में इस अनुश्रुति को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया। पारजीटर का अनुसरण कर अनेक पाश्चात्य तथा भारतीय विद्वानों ने पुराणों में विद्यमान ऐतिहासिक सामग्री का वैज्ञानिक रीति से विवेचन कर प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया और उसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। वर्तमान समय में प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास के लिए प्रधानतया पुराणों का ही आश्रय लिया जाता है, जिसे हमने भारतीय इतिहास का वैदिक युग कहा है। वह वैवस्वत मनु से प्रारंभ होकर राजा शांतनु के समय में समाप्त हुआ। इस युग के राजवंशों और राजाओं के साथ संबंध रखने वाली अनुश्रुति पुराणों में विद्यमान है, अतः वैदिक युग के राजनीतिक इतिहास के लिए वही प्रमुख आधार है। वेदों में सुदास नहुष मांधता एलपूर्वा आदि राजाओं का उल्लेख अवश्य हुआ है, पर इनका समय कौन सा था और उनमें कौन पहले व कौन पीछे हुआ, इस विषय में कोई सूचना नहीं मिलती। पौराणिक अनुश्रुति से ही हमें यह ज्ञात होता है कि सुदास उत्तर पांचाल का राजा था, नहुष प्रतिष्ठान का, मांधाता अयोध्या का और एलपूर्वा प्रतिष्ठान का। वस्तुतः वैदिक युग के राजनीतिक इतिहास के लिए वैदिक संहिताओं का कोई विशेष उपयोग नहीं है। ऐतिहासिक संप्रदाय के अनुसार वेद मंत्रों में आए हुए जिन नामों व शब्दों का संबंध किन्हीं राजाओं के साथ है, पौराणिक अनुश्रुति के राजाओं से हम उनका एकात्म में ही प्रतिपादित कर सकते हैं, पर उनके आधार पर स्वतंत्र रूप से राजनीतिक इतिहास को लिख सकना संभव ही नहीं है। इस दृष्टि से वेदों में इतिहास होने या न होने तथा इतिहास के लिए उनकी उपयोगिता पर विचार विमर्श करने का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। इस ग्रंथ में वैदिक युग के राजनीतिक इतिहास के लिए हम पुराणों का ही उपयोग करेंगे, वैदिक संहिताओं का नहीं। पर इतिहास में केवल राजवंशों और राजाओं का ही वर्णन नहीं किया जाता, इनका मुख्य उपयोग कालक्रम को सूचित करने के लिए ही होता है। इतिहास में देश की धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दशाओं का विस्तार के साथ विवेचन किया जाता है और साथ ही यह भी प्रदर्शित किया जाता है कि इन दशाओं में भिन्न भिन्न समयों में किस प्रकार परिवर्तन होते रहते हैं और इन परिवर्तनों के कारण क्या थे। वस्तुतः इतिहास का प्रयोजन मानव सभ्यता और संस्कृति के विविध अंगों के विकास को प्रदर्शित करना ही है। वैदिक युग के इतिहास के इन पहलुओं का विवेचन व निरूपण करने के लिए वैदिक संहिताओं का बहुत अधिक उपयोग है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वेद प्रधानतया धर्म परक ग्रंथ है, अतः वैदिक युग के प्राचीन आर्यों के धार्मिक जीवन का जैसा स्पष्ट और सर्वांगपूर्ण चित्र उन द्वारा प्रस्तुत होता है, वह सचमुच बड़े महत्व का है। यही बात सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन के संबंध में भी कही जा सकती है। वैदिक युग में भारत के समाज की क्या दशा थी, उसमें ऊंच नीच का भेद था या नहीं, क्या विविध जातियों का तब विकास हो चुका था, स्त्रियों की तब क्या स्थिति थी, उस काल में आर्थिक जीवन का क्या स्वरूप था, शिल्प व्यवसाय तथा व्यापार किस अंश तक उन्नत थे, कि इस प्रकार की बातों के संबंध में जो जानकारी वेदों से प्राप्त होती है वह बहुत ही महत्व की है। यदि राजनीतिक इतिहास को छोड़ दिया जाए तो अन्य सब विषयों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए वेदों से बहुत सहायता ली जा सकती है। वैदिक साहित्य बहुत विशाल है, उस द्वारा वैदिक युग के जन जीवन का, लोगों के धार्मिक विश्वासों का, उनके मनोभावों व आकांक्षाओं का, समाज के संगठन का और सर्वसाधारण के रहन सहन का एक स्पष्ट चित्र उपस्थित हो जाता है। वैदिक युग भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन युग है। बाद में के युगों में भारतीयों के धार्मिक मंतव्यों, पूजा की विधि, समाज संगठन और संस्कृति में बहुत परिवर्तन हुआ, पर इन परिवर्तनों के कारण समाज और संस्कृति की वह मूलधारा अवरुद्ध व नष्ट नहीं हुई जिसका प्रारंभ अति प्राचीन काल में वैदिक ऋषियों द्वारा किया गया था। भारत के बहुसंख्यक निवासियों का धर्म अब भी वैदिक है। इस देश के पुरोहित आज भी धार्मिक कर्मकांड में वेद मंत्रों का उपयोग करते हैं और वेदों द्वारा जिस ब्रह्म ज्ञान का प्रतिपादन किया गया था, भारत के प्रायः सभी मतांतर उसी को विभिन्न रूप में प्रस्तुत करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के वैदिक युग की इस मूलभूत संस्कृति और सभ्यता को समझने के लिए वेदों के उपयोग से इनकार नहीं किया जा सकता, पर जो विद्वान वेदों को ईश्वरकृत मानते हैं वे यह कह सकते हैं कि वेद तो अनादि और नित्य है, उनका संबंध किसी एक देश के साथ न होकर संपूर्ण विश्व तथा संपूर्ण मनुष्य जाति के साथ है, अतः उनके आधार पर भारतीय इतिहास के एक विशिष्ट युग की सभ्यता तथा संस्कृति का प्रतिपादन भी युक्तिसंगत नहीं होगा। इस कथन में विशेष सार नहीं है। हमने वैदिक युग उस काल को कहा है जिसमें कि गुतसमद, अत्रि, वशिष्ठ, कण्व आदि ऋषियों ने वेद मंत्रों का दर्शन किया था और उन द्वारा वैदिक सूक्तों के अभिप्राय को स्पष्ट किया था। यह आशा की जानी चाहिए कि उस समय के लोग वेद की शिक्षाओं का अनुसरण करते होंगे और उनका जीवन प्रायः वैसा ही होगा जैसा कि वैदिक साहित्य में प्रतिपादित है। भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश में भी प्राचीन काल में वेदों की वही मान्यता थी जो भारत में थी, यह विषय अभी विवादग्रस्त है। यह सही है कि गत वर्षों में पुरातत्व संबंधी खोज द्वारा ऐसे संकेत व प्रमाण मिले हैं जिनसे कि पश्चिम एशिया के अनेक प्रदेशों में वैदिक धर्म तथा सभ्यता की सत्ता सूचित होती है। इस संबंध में हम अगले अध्यायों में यथास्थान विशुद्ध रूप से भी प्रकाश डालेंगे, पर यह सर्वथा सुनिश्चित है कि वैदिक सभ्यता और संस्कृति का प्रमुख केंद्र भारत ही रहा है। अतः भारतीय इतिहास के वैदिक युग के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के परिचय के लिए वैदिक साहित्य के उपयोग में किसी को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। तीसरा, वैदिक युग के इतिहास की सामग्री। वैदिक युग के इतिहास को तैयार करने के प्रमुख साधन वैदिक और पौराणिक सहित साहित्य हैं। वैदिक साहित्य का विशद रूप से परिचय अगले दो अध्यायों में दिया गया है और इस साहित्य के अंतर्गत जो वैदिक संहिताएं हैं इतिहास के लिए उनकी उपयोगिता पर पिछले प्रकरण में विवेचन किया जा चुका है। वैदिक युग के राजनीतिक इतिहास को जानने के मुख्य साधन पुराण, रामायण और महाभारत हैं। पुराण वर्तमान समय में जिस रूप में मिलते हैं वो चाहे बहुत पुराने न हों पर उनमें संकलित अनुश्रुति अवश्य ही बहुत प्राचीन है। पुराणों का लक्षण इस प्रकार किया गया है, सर्गश्च प्रति सर्गश्च, वंशो मन्वंतारणी च, वंशानुचरितम चैवम पुराणम पंचलक्षणम, अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, सृष्टि का प्रलय किस प्रकार होता है, सृष्टि के विविध मन्वंतर काल विभाग कौन से हैं, इन विविध मन्वंतरों में किन वंशों के शासन और इन वंशों व राजाओं के चरित्र क्या थे, इन पांच बातों का वर्णन पुराण में किया जाता है। मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड, भागवत आदि पुराण ग्रंथों में प्राचीन आर्यों के वंशों व उनके चरित्रों का जो वर्णन संग्रहित है इतिहास के लिए उसका बहुत अधिक उपयोग है। इसमें संदेह नहीं कि पुराणों की यह अनुश्रुति प्रायः अस्पष्ट है, पर इसका ठीक तरह से अनुशीलन और विवेचन करके हम वैदिक युग के प्राचीन राज्यों, उनमें शासन करने वाले राजवंशों और राजाओं के संबंध में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेदों में जो राजाओं का कहीं कहीं प्रासंगिक उल्लेख आ जाता है और जो अनेक गाथाएं सूत्र रूप में मिल जाती हैं उनको भली भांति समझना तभी संभव है जबकि पुराणों में उपलब्ध अनुश्रुति को दृष्टि में रखा जाए। यह सही है कि पुराणों में तिथि क्रम का सही परिचय नहीं मिलता। उनमें राजवंशों और राजाओं की जो तालिकाएं दी गई हैं उनमें किसी निश्चित संवत का प्रयोग नहीं किया गया, पर प्राचीन भारतीय काल का विभाग चतुर युग द्वारा किया करते थे, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। इन चार युगों में उन्होंने भारत के इतिहास को विभक्त किया था। पौराणिक अनुश्रुति से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कौन सा राजा कलयुग के शुरू में हुआ, कौन से राजा द्वापर, त्रेता व कृत्य युग के शुरू में हुए और कब कलयुग का अंत हुआ। प्राचीन आर्य राजाओं के पौरवापर्य बस समय को निश्चित करने के लिए यह बात कम महत्व की नहीं है। कठिनाई तब आती है जबकि हमें कलयुग के प्रारंभ का समय निश्चित करने की आवश्यकता होती है। पुराणों के निर्माताओं बस संकलियताओं के सम्मुख शायद यह कठिनाई नहीं थी, पर साहित्यिक आधार पर अब यह भी निश्चित किया जा सका है कि कलयुग का प्रारंभ कब हुआ। यद्यपि सब विद्वान इस विषय पर एकमत नहीं है, पौराणिक अनुश्रुति का अनुशीलन करके अब प्राचीन भारतीय इतिहास की रूपरेखा अवश्य निर्धारित की जा सकती है। पुराणों के अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण और महाभारत संस्कृत साहित्य के दो ऐसे ग्रंथ हैं जो वैदिक युग के इतिहास के अनुशीलन के लिए बहुत उपयोगी है। रामायण में इक्ष्वाकव अर्थात सूर्य वंश के राजा दशरथी राम का बड़ा वृत्तांत बड़े विस्तार से दिया गया है। महाभारत में पौरव वंश को दो शाखाओं कौरव और पांडव के पारस्परिक संघर्ष का इतिवृत्त संकलित है, पर महाभारत में भारत के प्राचीन राजवंशों के साथ संबंध रखने वाले अन्य भी बहुत से आख्यान संग्रहित हैं और इस विशाल ग्रंथ के अनुशीलन से प्राचीन भारतीय इतिहास पर बहुत विशद रूप से प्रकाश पड़ता है। निसंदेह महाभारत की रचना एक विशाल विश्वकोश के रूप में हुई है और जो न केवल प्राचीन आख्यानों गाथाओं और इतिवृत्त पर प्रकाश डालता है अपितु साथ ही प्राचीन भारतीय राजनीतिक अध्यात्म चिंतन और ज्ञान का भी प्रतिपादन करता है। रामायण और महाभारत का वर्तमान रूप चाहे पुराणों के समान अत्यंत प्राचीन न हो, पर यह निर्विवाद है कि उनमें प्राचीन भारतीय अनुश्रुति बड़े सुंदर रूप में सुरक्षित हैं। इन्हीं ग्रंथों को प्राचीन समय में इतिहास कहा जाता था। वस्तुतः ये भारत के प्राचीन आर्यों के इतिहास हैं। वैदिक और पौराणिक अनुश्रुति के समान महाभारत का कर्ता या संकलयिता भी मुनि वेदव्यास को ही माना जाता है। पुराण संख्या में 18 हैं, पर 18 पुराणों के अतिरिक्त अन्य भी अनेक पुराण पाए जाते हैं। प्राचीन समय में भारत में अनेक सूत वंश होते थे जो राजवंशों व राजाओं के इतिवृत्त को अनुश्रुति के रूप में सुरक्षित रखते थे। परंपरा के अनुसार यह कहा जाता है कि 18 पुराणों का पाठ सूत लोमहर्षण और उसके पुत्र सौती उग्रसर्वा ने किया था। धर्म तथा अध्यात्म के क्षेत्र में जो स्थान ऋषियों का था वही स्थान वंशानुचरित के लिए सूक्तों का था। वर्तमान समय में पुरातत्व संबंधी कोई ऐसी सामग्री उपलब्ध नहीं है जिसका उपयोग वैदिक युग के राजनीतिक इतिहास को तैयार करने के लिए किया जा सके। इक्ष्वाकु मांधता भरत दिलीप रघु रामचंद्र आदि अनेक प्रतापी राजाओं के वीर कृत्यों के वृत्तांत से प्राचीन भारतीय साहित्य परिपूर्ण हैं। उनके कोई भी उत्कीर्ण लेख सिक्के मुद्रांक आदि सब अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। अयोध्या हस्तिनापुर प्रतिष्ठान आदि जिन नगरों में ये राजा शासन करते थे उनकी खुदाई का कार्य अभी तक इतना नहीं हुआ है जिससे कि इन राजाओं के कोई स्मृति चिन्ह उपलब्ध हो सके। पुरातत्व संबंधी सामग्री के अभाव के कारण कतिपय विद्वान यह भी प्रतिपादित करने लगे हैं कि राम आदि की कथा कल्पित हैं, ये राजा कभी हुए ही नहीं थे। पर भारत में पुरातत्व संबंधी अन्वेषण अभी प्रारंभिक दशा में है, अतः राम कृष्ण रघु आदि के मुद्रांकों या शिलालेखों आदि का उपलब्ध न होना यह निरूपित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वैदिक युग के जिन राजाओं का परिचय हमें पौराणिक अनुश्रुति से प्राप्त होता है वह वस्तुतः हुए नहीं थे। यह आशा की जा सकती है कि भविष्य में इन राजाओं के स्मृति चिन्ह भी उसी प्रकार से उपलब्ध हो जाएंगे जैसे कि मौर्य तथा गुप्त वंशों के राजाओं के मिल चुके हैं। पर वर्तमान समय में भी पुरातत्व संबंधी कुछ ऐसी सामग्री उपलब्ध है जिसका उपयोग वैदिक युग के इतिहास के लिए किया जा सकता है। यह सामग्री दो प्रकार की है। पहला, पश्चिम एशिया की तुर्की इराक आदि देशों से प्राप्त उत्कीर्ण लेख मुद्रांक आदि जिनसे इन देशों के प्राचीन निवासियों का भारत के धर्म तथा संस्कृति के साथ संपर्क होना सूचित होता है और दूसरा सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष। सिंधु घाटी की यह सभ्यता आर्यों की थी या आर्यभिन्न लोगों की, इस प्रश्न पर विद्वानों में मतभेद है, पर यह निर्विवाद है कि इस सभ्यता का वैदिक युग के आर्यों के साथ संबंध था। पुरातत्व संबंधी इस सामग्री का उपयोग इस ग्रंथ में यथास्थान किया जाएगा। समाप्त।